नारायण 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 राम करने के लिए जब हम प्रवृत्त होते हैं उसमें हमारा उद्देश्य होता है उसी के अनुसार प्रवृत्ति होती है और उद्देश्य दृढ़ रहने से वो काम ठीक होता है। जैसे पैसा कमाने के लिए लोग प्रवृत्त होते हैं तो ये विचार कर लें कि हम उम्र में पैसा कमाना है तो पैसे के लिए उद्योग में लग सकते हैं, परंतु पैसे मिल जाए ये नियम नहीं है। मिल भी जाए ना भी मिले, मुनाफा भी हो जाए घाटा और हो जाए, तो सांसारिक कामों का उद्देश्य है वो बनाकर काम करेंगे तो कोई नई उन्नति नहीं होगी, नया फल नहीं मिलेगा, पुराना जो फल है कर्मों का वो ही मिलेगा। उसमें सुगमता से कठिनता से हो जाए ये तो फर्क पड़ता है, परंतु इसको नया काम नहीं होता। और पारमार्थिक काम करते हैं उसमें नया फल होता है। ऐसे ही सांसारिक काम करते हुए अगर लोभ में काम में क्रोध में मोह में फंसकर हम काम करते हैं उसका बुरा फल जरूर होता है। अभी तो लाभ होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं, और होगा तो प्राप्ति के अनुसार होने वाला ही, परंतु काम क्रोध लोभ आदि के वशीभूत काम करेंगे उसका नुकसान जरूर होगा, आगे दुर्गति होगी इसमें संदेह नहीं है। तो दो विभाग हुए, एक तो यहां काम करने से यहां सफलता हो और यहां के कर्म से अगर ही सुख और दुख पावे, तो अगर ही और सुख और दुख पावे इसके लिए तो यहां किया हुआ कर्म सफल होगा, पर इस लोक में तनी हो जाए आराम से रहें ये हाथ की बात नहीं है। इस बात की तरफ विशेष आप ध्यान दें। मैं जो ये कहता हूं कि विशेष ध्यान दें वो बड़ी काम की चीज होती है, अभी समझने की चीज होती है। अगर हमारे जो फल मिलेगा मरने के बाद वो तो अवश्यम भावी है, मिलेगा ही, एक जन्म में दो जन्म में तीन जन्म इसका पता नहीं है। उग्र पाप और पुण्य होगा तो जल्दी फल होता है, नहीं तो देरी से होता है, लेकिन वो फल भोगना पड़ता है। और एक है यहाँ का विभाग, यहाँ हम काम करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, तो यहाँ सुखी हो जाएंगे पर वो सुखी यहां के नहीं होंगे। इसमें एक भाग है कि जिससे अपना सुखपूर्व निर्वाह करें और एक दुखपूर्व निर्वाह करें। निर्वाह वैसा ही होना होना है बरोबर, अगर ठीक तरह से न्यायुक्त चलेंगे तो चित्त में शांति रहेगी, और अन्याय पूर्व काम करेंगे तो निर्वाह तो उतना ही होगा पर चित्त में अशांति रहेगी। तो सुख दो तरह का हुआ, एक चित्त की शांति अशांति, एक बाहर की परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी। तो बाहर की सुखदायी दुखदायी परिस्थिति तो वैसी रहेगी, और न्याय में ठीक तो अंतकरण की शांति है, भीतर में सुख रहेगा। कभी पाप और अन्याय भूल से भी हो जाएगा तो उसका भी पश्चाताप होगा, परंतु चित्त में अशांति पैदा नहीं होगी, स्थायी अशांति नहीं होगी। और अन्याय कुछ काम करेंगे उसके संस्कार भीतर बैठेंगे, उसे अशांति होगी और पाप का फल भी दंड भोगना पड़ेगा। ये बात तो हमें सोच समझ काम करना है। अब उसमें अभी जो सामने उद्देश्य रखते हैं उसमें दो उद्देश्य मुख्य रहता है मनुष्यों का, एक तो धन कमा करके सुखी हो जावे और एक भोग भोग करके सुखी हो जावे। मन चाहा भोग भोग रहे और एक मन चाही संपत्ति इकट्ठी करने, ये दो, इस दो में आसक्ति रहती है, भीतर से कामना रहती है, भीतर से भाव रहता है कि धन कमा कर धनी हो जाए। तो भाव तो रहता है पर धनी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है। ऐसे भोग भोगने की, सुख भोगने की इच्छा तो रहती है, परंतु सुख चाह मन चाह मिल जाए ये हाथ की बात नहीं है। ये बात विशेष ध्यान देने की है। अपने मन के मुताबिक सुख मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम मिल जाए, ये हाथ की बात नहीं। अपना आचरण शुद्ध बन जाए, निर्मल बन जाए, ये हाथ की बात है। और हाथ से निर्मल बात बनेगी तो इसमें दुख नहीं होगा, हृदय में शांति रहेगी। बाहर जाए तो ऐसी परिस्थिति हो, बाहर सामग्री धनवान की भी हो सकती है, निर्धनता की भी, परंतु न्यायुक्त ठीक काम करेंगे तो चित्त में शांति रहेगी, चित्त में अशांति नहीं रहेगी। एक कहानी याद आ गई, वो आपको सुनावे जिसमें कुछ ये विषय साफ समझ में आ जाता है। एक सज्जन थे तो रात्रि में लघुशंका करने के लिए उठे, सामने एक सुनार का घर था, तो ये पैरा लगाने वाले हैं ना, रात्रि में गश्त लगाते हैं, खबरदार खबरदार करते हैं। उनमें से एक आदमी ने वहां चोरी करी, सुनार के गहना घराने के लिए सोना भी रखा था, उसको पता है कि आज सुनार के घर में सोना आया हुआ है, इस कारण से वो रात्रि में जाकर के और वो सोने का बक्सा उठा लिया और सुनार उठा तो उसको मार दिया, सुनार को मार करके सोना लेकर बाहर आ गया। देवी योग से वो लघु शंका के लिए उठा तो वो प्रसाद करके उठा, इतने में वो बक्सा लेकर के बाहर निकला, उसको पट पकड़ लिया। तो वो बोला कि देख आज तू मेरी बात मान ले तो तेरा हिस्सा कुछ और कुछ मेरा, ऐसे अपने बांट लेंगे, और नहीं मानेगा तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी। वो कहा दुर्दशा हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं तो ऐसे तू चोरी कर रहा है ठीक है, तो पकड़ लिया बक्सा तो रख दिया। ओ पैरा लगने वाले ने सिटी हो जाई, जितना पैरा लगने वाले इकट्ठे हो गए, इकट्ठे हो गए। बात क्या है, कैसा इस घर से ये सोना ले निकला और मैंने पकड़ लिया। वो सिपाही कहता तो उनको देखा, घर में जाकर देखा तो आदमी होना पड़ा, कत्ल हो गई, तो उस समय उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके हाजिर कर दिया राजगृह। ये रात में इसने चोरी करी, डाका डाला, आदमी को मार दिया, ये सुना लेकर जा रहा था, मैंने पकड़ लिया। तो साहब ने हथकड़ी पड़ गई, कैद न कर दिया। जज था बड़ा ईमानदार, उसी कुछ बातें चली, कैदी को मुकदमा चला, अंत में उसने फांसी का हुक्म लिख दिया, इसको फांसी दे दी जाए। चोरी भी करी और आदमी को कत्ल कर दी, फांसी दे दी जाए, तो हुक्म लिख दिया उसने। लिखा तो वो लेख उसने सुना, हुक्म के अमुक दिन तेरे को फांसी दी जाएगी, तो उसकी बात निकली कि संसार में न्याय नहीं है। जज पर असर पड़ गया कि वास्तव में ये पापी नहीं है, इसलिए जो जबान निकली है निर्भयता की और न्याय की निकली है। तो उसको एकांत में लेकर पूछा बात क्या है, तो उसने एकांत में बात कह दी कि ऐसे ऐसे था और ये सिपाही को लेकर के मैंने पकड़ा और मैंने इल्जाम लगा दिया, सिटी बजा दी, इनके साथ भी तो बहुत थे, मेरा कोई साथ नहीं, मैं तो अकेला ही था, पकड़ लिया गया, ये मैंने नहीं कत्ल की है। बिल्कुल जज के जजगी, जज के जजगी आवाज की, ठीक है। जज ने एक परीक्षा के लिए काम किया, तो एक सुबह के समय रोता रोता आदमी आया और उसने कहा था कि रात मेरे यहाँ पर डाका पड़ा और हमारे पिताजी ने कत्ल कर दी, उनको मार दिया, ऐसी बात है काम साहब। तो कुछ जज का बनाया हुआ था ना कुछ, तो वहां जाकर देखे तो खाट है, उसके पास में लोही बिखरा हुआ पड़ा है, कपड़ों के खून लगा हुआ है और वो सोया हुआ है। तो एक तो वो चोरी करने वाला सिपाही और एक वो जो पकड़ा गया सर सजना दी, वो इन दोनों को कहा कि तुम उसको उठा लाओ, देखेंगे। तो वे दोनों लग गए, थोड़ा सा बीच में जंगल पड़ता था, उस जंगल में वो सिपाही बोलता है कि तू मेरी बात मानता तो तेरे को धन मिल जाता, अगर मेरी बात नहीं माने तो देख फांसी होगी तुम्हारे को भी, अब फांसी होने वाली है, मेरी बात नहीं माने। वो कहते हैं फांसी हो जाए कुछ भी हो जाए, मैं भाई चोरी का धन नहीं चाहता, मैं ऐसा धन रहने वाला हूं नहीं। ऐसी उन दोनों की बातें हुई। ऊपर जो एक सोता हुआ आदमी था ना, उसने लिख लिया कि सिपाही ये बोला, कैदी ये बोला, वो ये बोला, सब बयान लिख लिया। तो जाकर खाट रखा, सचा उठ गया वो। अब वो सिपाही कांपने लगा कि बात पुल निकल गई, उसने जरा हाजिर कर दिया सर ये बयान है इनकी। तो जिसने कहा ठीक, तो सर ने फिर कुछ मुकदमा उदा चला चला, अंत में उसको फांसी का हुक्म हो गया, इसको फांसी दे दी जाए, इसने कत्ल किया है। अब जैसे उसको एकांत लेकर बोलते हैं आदमी को, तैने ये कत्ल नहीं की, परंतु तैने उम्र में कोई भी मनुष्य हत्या की है क्या, सच्ची सच्ची बता दे। तो उसने बताया कि एक आदमी हमारे घर पर आता था, तो वो छिप कर आता, एक दिन मैंने उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया तो मैंने उसको मार दिया, मार करके घर के पीछे बहने वाली नदी में मैंने फेंक दिया, किसी को पता नहीं लगा, वो आदमी कहाँ गया क्या हुआ कोई पता नहीं किसी को। ऐसे मेरे हाथ से एक कत्ल हुई। तो जज ने कहा कि मैं झूठ बोलता नहीं, खाएगी खाता नहीं किसी से, मेरे द्वारा हुक्म कैसे लिखा गया, तो ये हत्या हुई तेरे उस बात का फल है, ये फांसी होगी तेरे को, और उसके लिए फांसी दूसरी बताई गई, उसके लिए दूसरे हुक्मगार फांसी हुई, दोनों को फांसी हो गई। कहा कि ये तेरी की हुई कसर है, वो कहता और कोई बात फांसी की बात नहीं है मेरे को, सजा हुई उसके विचार है कि दोषी तो वो बस फांसी मेरे को हुई, तो फांसी हुई उसका तुम कारण तुम्हारी पहले की हत्या और अभी इसने करी तो इसकी हत्या का फल इसको होगा। तो कौन से कर्म का फल कब मिलता है इसका पता नहीं, परंतु मिलता है पाप का ही फल। तो अब पाप किया उसको भी फांसी हो गई और इसकी फांसी वो नहीं हो गई, दूसरी हो गई। तो उसने संतोष प्रकट किया कि अब मेरी वो बात नहीं है कि अन्याय होता है, वो तो मैंने अन्याय किया था भोग लूंगा। तो इससे पता नहीं लगता कि किस कर्म का फल कब होता है, परंतु किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ता है। अधिक दिन जी जाए उनका जीवन बाकी था, इस वास्ते इतने दिन जी गए, वर्ष बीत गए होंगे, परंतु अंत में फांसी हुई उसको और उस सिपाही को फांसी दे दी गई। तो पता नहीं लगता है किस समय में हमने कर्म किए थे, किसने फल है। परंतु एक बात याद रखो कि जो कुछ दंड भोगना पड़ता है वो अपने ही कर्मों का फल होता है। तो यहाँ सुविधा असुविधा करने से सुविधा हो जाए ये कायदा नहीं है, पर कर्म करोगे उसका फल भोगना जरूर पड़ेगा। तो यहाँ सुख सुविधा हम कर रहे ये हाथ की बात नहीं है, कर्म उनके लिए करते हैं उसका दंड हमारे को भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। डरते रहो, ये मानव शरीर है, बहुत बढ़िया चीज है। जैसे अच्छा खेत होता है उसमें जो अनाज बहुत अच्छा होता है, और कांटों के वृक्षों के बीज पड़ेंगे तो कांटे भी बड़े बड़े होंगे, क्यों खेत है जमीन बढ़िया, वो तो जैसा है वैसा फल देगा, वैसा ही पौधा होगा। ऐसे मानव शरीर है, इसमें किए हुए पाप और पुण्य का फल अगारी भोगना पड़ता है, इसमें किए हुए कर्मों का फल ताजा होता है बड़ा। पाप करोगे तो पाप का फल भी मरद भयंकर होगा, पुण्य करोगे तो पुण्य का भी बड़ा ही सुखदायी फल होगा। और भगवान की भक्ति करके हृदय ऊंचे उठ जाओ तो मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, ये पाप पुण्य दोनों से ऊंचे उठ जाओगे। वो मौका इस शरीर में है। तो अब इस शरीर में आकर हम क्या करें, किस तरह से हम कर्म करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो आज सुबह मैंने बात बताई थी, ये बताई थी आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिनः सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मतः। ये छठे अध्याय का 32वां श्लोक है। रामायण में एक सिपाही आती है, जब सीताराम जी लक्ष्मण जी चित्रकूट पर रहते थे उस समय लखन लाल जी का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सेयर लखन सियर उबी रही। लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते, सीता जी की और राम जी की दोनों को ही माँ बाप की तरह समझ करके। माता सुमित्रा ने कहा था कि बेटा रामम दशरथम विद्धि, ये राम तो है दशरथ, और माम विद्धि जनकात्मजाम, ये जनकराज दुलारी है वो साक्षात मेरा स्वरूप है, तेरे तो माँ बाप दोनों साथ में, तेरे तो मौज है। तो माँ के कहने के अनुसार सीताराम जी की सेवा सपूत से सपूत माँ बेट माँ बाप की बेटा करे, इससे सेवा करते थे लखन लाल जी दोनों की, सीता जी की और राम जी की। तो उसमें कहा है कि अविवेकी पुरुष शरीर ही, अविवेकी अज्ञानी शरीर को ही बढ़िया मानने वाला जैसे शरीर का पालन पोषण करता है, शरीर के किसी तरह का दुख न हो और सब तरह का सुख आराम भोग हमारे को मिले, इसके बाद कुछ बचा न रख करके खूब इससे करते हैं। तो लखनलाल जी अविवेकी पुरुष शरीर की सेवा करे जो सीताराम जी की सेवा करते हैं। तो शरीर की सेवा में अविवेकी दिया, विवेकी होता है, विरक्त होता है, त्यागी होता है, उसकी शरीर पर इतनी दृष्टि नहीं रहती। शरीर सुपार दुपार ये तो सुख उपारण वाला पाएगा ही, परंतु अपना तपोबल नष्ट नहीं करना है, अपने साधना को नष्ट नहीं करना है, उसके रहते हुए जो हो जाए जो हो जाए, तो वो शरीर की पालना नहीं करते। अविवेकी तो शरीर की ही पालना करता है, कुटुंबियों की परवाह नहीं करता, सुख पाते हैं दुख पाते हैं इसकी परवाह नहीं, अपना शरीर आराम से रहे ऐसा पेटु और चट्टु होता है। खाने पीने में रहना ऐसा आराम में रहना, रुपये कमाना उसमें अपने आराम देखना, घर वालों को मिल जाए तो दे देनी है, नहीं तो अपने आराम रहना। तो ऐसे रहते हैं तो ऐसे मनुष्य है कई जो अपने सुख को ही देखते हैं। परंतु गीता कहती है कि जैसे अपने शरीर को ठीक तरह से रखना चाहते हैं, ऐसे ही सब जगह सुख और दुख देखना चाहिए। शरीर में भी हमारे को ज्ञान हो तब हम ठीक तरह से करते हैं, ज्ञान नहीं हो तो नहीं होता, उसमें हमारे पर जिम्मेवारी भी नहीं होती। ये चूहे होते हैं ना कुंदर, ये काट लेते हैं, मेरे काम पड़ा है, पेड़ी की चमड़ी है ना उस चमड़ी को काट लिया, ये इतनी दूर तरह से ऊपर ऊपर चमड़ी काट ली, सुबह उठते तो कंकर चुभता है, क्या क्या हो गया भाई, तो देखते हैं तो ऊपर की चमड़ी नहीं है। परंतु ऐसी बात है वो ऐसे फूंक दे अगर काटते हैं तो जिसे की काटते हैं उसको पता नहीं लगता और वो खा जाते हैं चमड़ी, तो घाव तो हो ही जाता है पता नहीं लगता। ऐसे हम काम करते हैं कई बार हमारा नुकसान होता है, शरीर गर्म हो जाता है पता नहीं लगता है, तो पता लगता है तब शरीर के आराम के लिए काम करते हैं। तो भगवान का कहना है इस संसार में तुम रहो तो सामने तुम्हारे ज्ञान आवे, दिन बातों ज्ञान हो जाए। अब अज्ञान में हमारी चमड़ी काट ली तो हमारे को पता नहीं लगा, ये बीती हुई बात है, परंतु ज्ञान होता है तो चूहे को थोड़े काटते देंगे, हम नहीं काटते देंगे। इस तरह से हमारे ज्ञान में बात आ जाएगी तो सही की हम रक्षा करेंगे। इस तरह से हमारे सामने किसी को भी कष्ट होता हो तो उस कष्ट को हम दूर करें, सुख नहीं है तो सुख पहुंचावे। कैसे पहुंचावे कि जैसे अज्ञानी अविवेकी शरीर को सुख पहुंचाता है दुख दूर करता है, ऐसे दुनिया का कोई प्राणी चाहे कुत्ता और गधा हो चाहे मनुष्य हो पशु हो चाहे पक्षी हो उसका दुख दूर करने का काम हमारा रहता है। तो उसमें क्या करें, हमारे पास जो संपत्ति है धन आदि वस्तु है वो वस्तु उसको दे करके सुख पहुंचावे, और शरीर में बल आदि है पैसे आदि दे करके उसका दुख दूर करे, दवाई से और होता कपड़े आदि से रोटी से। तो दुनिया के सुख दुख को कैसा समझना चाहिए कि जैसे अपने शरीर का, तो शरीर को सुख पहुंचाना और दुख दूर करना ये स्वतः वृत्ति रहती है, ऐसे स्वाभाविक हमारी वृत्ति रहनी चाहिए। कोई प्राणी आवे तो उसको दुख न हो, सुख पहुंचावे आराम पहुंचावे, ये एक नियम बना ले ऐसा। जैसे शरीर के लिए स्वतः नियम होता है कि आराम की बात में लगते हैं दुख से दूर हो जाते हैं, ऐसे मात्र प्राणियों का दुख दूर करें और सुख लगाए। कितना करें कि जितना सुख सुख कर सके, नहीं कर सके वो हमारी जिम्मेवारी में, हम जितना हमारा बल बुद्धि विद्या योग्यता पद अधिकार जो कुछ है इसके द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे इस रीति ये भाव रखते हुए हमारे सामने किसी को दुख न रहे, उनको सुख पहुंचाए, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा करें। तो इस संसार में हमें कैसे रहना चाहिए कि जैसे शरीर की सेवा करे, ऐसे हमारे सामने जो कोई आ जाए उनकी सेवा वैसे ही करे, दुख दूर करने में और सुख पहुंचाने में अपनी शक्ति के अनुसार सहायता करे। शक्ति से बाहर की बात हो तो क्या करे भाई, माँ होती है उसका बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है बच्चे पर, बीमार हो जाता है तो रातों जगती है, बैठी रहती है, परंतु उसकी ताकत नहीं कि उसकी बीमारी को दूर कर दे, वो तो कर नहीं सकती। आप उसके लिए बैठी रहे, सेवा करे, काम करे। ऐसे हमारा काम सेवा करने का है, सुख पहुंचाने का है, दुख न रहे, हम दुख दूर न कर सके वो बात तो अलग है, माँ भी नहीं कर सकती, क्या करे। माँ बिचारी वो देती है, दुखी हो जाती है, परंतु उसका बुखार दूर कर नहीं सकती। ऐसे दूसरे का दुख दूर हम कर नहीं सकते, परंतु अपने सुख की सामग्री खर्च करने में हमें संकोच नहीं होना चाहिए, उसमें कमजोरी कृपणता नहीं करनी चाहिए। किस तरह से सबको आराम मिले, सबका दुख दूर कैसे हो, सब सुखी कैसे हो जाए, ऐसी दृष्टि से हम सबके साथ बर्ताव करें। तो गीता में आया है कि ऐसे शरीर की उपमा लेकर सबको सुख पहुंचाना और किसी का भी दुख दूर कर देना, इसमें हम रात दिन लगे रहे, इसकी बड़ी भारी महिमा कही है गीता में, इसकी महिमा कही है। ऐसे जो सुख और दुख को सब जगह समान देखता है, जैसे शरीर के लिए दुख दूर करता है, सुखी कर दे, सुख पहुंचाता है, ऐसे दुनिया में जहां जहां दृष्टि पड़े उनकी बस चले, वहां पर उनका दुख दूर करता है और सुख पहुंचाता है। सहयोगी परमो माता, वो सब योगियों में श्रेष्ठ योगी, परम योगी कहा है उसको। दूसरे योगी होते हैं, सहयोगी परमो माता सर्वोत्कृष्ट योगी है। तो सज्जनों, प्राणायाम आदि करके योग करना है, उससे भी ऊंचा योग ये बताया गया है। और केवल इतनी ही बात, जैसे शरीर की स्वाभाविक हमें रक्षा करते हैं, आराम पहुंचाते हैं, ऐसे स्वाभाविक ही दुनिया के जीवों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना और दुख दूर करना, इससे से हम करें तो परम योगी हो जाएंगे। गृहस्थ में बैठे हुए तो प्रश्न आया था, गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे करें, तो गृहस्थ में रहते हुए कर सकते हैं, इसमें साधु होने की जरूरत नहीं। जहाँ रहते वहाँ ही अपने माता पिता, भाई भौजाई, स्त्री बच्चे, कुटुम्ब जितने के उनको सुख कैसे हो, और बाहर जावे तो जो हमारे सामने आ जाए उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे पहुंचे, इस तरह से अपने बात करें। तो ऐसा बसाव करें, ऐसे बदलाव करने से परम योगी हो जाते हैं। गीता के अनुसार श्रेष्ठ योगी माना, सहयोगी परमो मता, वो परम योगी माना गया। तो यहाँ का योग का अभ्यास नहीं है, परंतु परम योगी हो गया वो। तो बहनों से, माताओं से, भाइयों से सबसे कहना है कि आप अपने जीवन को ऐसा निर्मल बनावें कि दूसरों के दुख को दूर करें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जैसे परम योगी बताया ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसके समान दान है, पुण्य है, धर्म है, आप करते हो, परंतु इसके समान नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और पर हित बस जिनके मन माई, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, जहाँ भगत पड़े वो काम में लेता है, तो दूसरे के हित करने का भाव भीतर भरा रहता है। तिनका जग दुर्लभ कुसुमाई, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। गीता में कहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित, प्राणी मात्र को सुख पहुंचा है, उसके हित में जिनकी रति है, प्रीति भीतर से प्रीति है कि सब सुखी हो जाए, ऐसा जिसकी भाव है, इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं। भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ है, यही काम रखे। मैंने दृष्टांत दिया कि जैसे प्याऊ पर बैठा है तो कोई आ जाए ठंडा जल पियो भाई, छाया में बैठो आराम करो। जैसे वो जल पाता है कौन जाति का है, कहाँ से आया, कहाँ जाता है, कोई मतलब नहीं। हमारे तो उसकी प्यास दूर हो जाए, ठंडा जल पी जाए, आराम हो जाए। इस वजह से हम जहाँ रहे वहाँ सबको सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले, किसी को दुख न हो, हम दूर कर सकें अपनी शक्ति के अनुसार हम उद्योग करें, तो ये मनुष्य जन्म सफल हो जाता है, परम योगी हो जाते हैं। जहाँ है वहाँ ही रहते रहते, ये बात है। इसमें कोई अड़चन दिखती हो, आपको कोई बाधा दिखती हो तो बोलो, और नहीं तो अपना विचार कर लो। आप कर सकोगे, देखो पुण्य पाप का फल मिलेगा वो तो हमारे हाथ की बात नहीं, किंतु जीवन हमारा सफल हो जाएगा, मानव शरीर मानव जन्म लिया सफल हो जाएगा। और ये मनुष्य के ऊपर ही जिम्मेवारी है, और उस पर जिम्मेवारी है नहीं। देवताओं कोई अधिकार नहीं है, भूत प्रेत के साथ 84 लाख के जीव जंतु इनकिन पर भी ये जिम्मेवारी नहीं है, ये जिम्मेवारी केवल मनुष्य पर है। और मनुष्य पनाही तभी होता है कि जो अपने कष्ट उठा करके दूसरों को सुख पहुंचावे, इससे ही बात है। तो ये केवल अपना विचार कर लें कि जहां रहे हैं वहां सेवा करेंगे, दुख दूर करेंगे, हमें शक्ति के अनुसार उनको सुख पहुंचाएंगे। नारायण 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 नारायण।
यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 9 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बिना सत्य चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ।